नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। हे दयामय, आप ही संसार के आधार हो, आप ही कर्तार हो, हम सबके पालन हार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए वह मति बने हम सद्गुणी संसार में, मन हो मंजुल धर्ममय और तन लगे उपकार में। ओम शांति शांति शांति। ओम
आदरणीय भद्र पुरुषों, सम्मान की योग्य मातृशक्ति, दो दिन पूर्व परसों ही भारत का स्वातंत्र दिवस मनाया गया। वी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। और आज बड़ा सुंदर विनीता जी ने गीत गाया भारत के विषय में। मैं भी भारत के विषय में ही कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन थोड़े लकीर से हटके। मैं शहीदों की बात नहीं करूंगा, इतिहास और संस्कृति की भी बात नहीं करूंगा, तो कुछ नए और कुछ अलग विचार आपको सुनने को मिलेंगे भारत के विषय में। एक किसी गांव में नाटक हो रहा था और नाटक में पौराणिक पात्र थे अलग अलग। कोई राक्षस थे, कोई देव थे, दोनों तरफ के अलग अलग रथी महारथी थे और उनके देवों के राजा इंद्र का भी एक पात्र था। लेकिन हुआ ऐसे कि नाटक के ठीक उसी दिन, रात्रि में नाटक होने वाला है, और दिन में ही वो व्यक्ति बीमार पड़ गया जिसने इंद्र का पात्र करना था। अब क्या करेंगे? जो इंद्र की भूमिका करने वाला था नाटक में, भाई इंद्र तो महाराज है ना देवों के पुराणों के अनुसार, और वही व्यक्ति बीमार पड़ गया, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कैसे आएगा नाटक खेलने के? तो सबने तय सोचा कि भाई जो हलवाई है, जो चंदू हलवाई है, अच्छा मोटा हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है, उसको जो है हम इंद्र बना लेंगे। अच्छा, उसने कहा भाई मुझे अब कहां वो सारी बातें जो कहने की है क्या याद होगी, समय तो थोड़ा है। उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम तो इंद्र बनोगे, कहने तो लोग कहेंगे, तुम्हें तो बस केवल उस अपने भव्य चेयर पर बैठना है, जाकर के अपने राज सिंहासन पर बैठना, बड़े सुंदर अच्छे इंद्र के अच्छे कपड़े डालेंगे और वहां बैठना है, और कुछ नहीं, बस तुम्हारे उपस्थिति में सारा कार्यक्रम चलने वाला है, मुझे बोलना तो नहीं है ना। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना। और वो स्वर्ग की अप्सराएं आ रही हैं, सैनिक आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो सारे अलग अलग बातें हो रही नाटक में प्रत्यक्ष, और वो इंद्र बना हुआ चंदू हलवाई बड़े ठाट से बैठा हुआ। लेकिन इतने में जो है वो अंक खत्म हो गया, अब भाई दूसरा अंक शुरू करना है। वो इंद्र भगवान को कहेंगे अब तुम उठो तो सही, वो उठे ही ना, इंद्र पद मिला हुआ कौन छोड़े उसको। नाटक हो रहा है, बाजू से इशारा कर रहे, अरे तेरा काम खत्म हुआ, उठ अब यहां से। वो कहे उठ नहीं, अब मैं तो असली चेयर पर बैठा हूं, मैं तो नहीं उठूंगा। मैंने उसको बार बार इशारे किए जा रहे, तुम अब वो नाटक खत्म हो गया, तुम्हारा पात्र का काम खत्म हो गया, अब चलो दूसरा पात्र आने वाला है। वो कहे कि मैं नहीं उठता, वो उधर से इशारा कर रहे होंगे ना बाजू से, और ये कहे कि नहीं मैं उठता, तुम तो बीच में वो बोला, चुप रहो सब, मैं यहीं बैठूंगा, अब मैं यहां से नहीं उठने वाला हूं। जोर से ही बोल पड़ा तो दो लठ लेने वाले दोनों आ गए और धक्के मार के उसको बाहर कर दिया। है ना, बड़ा आ रहा है, इंद्र बना फिरता है, भैया आगे नाटक करना है, हट जा, बोले तो हटता ही नहीं। और वो आदेश दे रहा था कि मेरी बात सुनेगी, अब तो मैं इंद्र हो गया हूं ना, अबे नाटक में हो गए थे इंद्र, यहां कहां इंद्र, तो प्रत्यक्ष पंच प्रत्यक्ष तो तुम चंदू हलवाई हो, हमारी कहानी खत्म हो गई, वो क्या बात थी। तो चंदू हलवाई अपने इंद्र पद से हट नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बैठते ही उसे ऐसा लगा था कि मैं सचमुच ही इंद्र हो गया हूं। भाई दास दासियां खड़े हैं, नौकर चाकर खड़े हैं और आदेश मानने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आप कहो वही सब मानेंगे, तो क्या कहना इससे बड़ी बात। मनुष्य जब बाहर का ओढ़ा हुआ जो मुखौटा है, ओढ़ा हुआ चेहरा है, नाटक के अंदर लगाया हुआ चेहरा है, उसको जब असली मान लेता है तो समस्या पैदा होती है। भारत जो भारत है वो अंदर की बात करता है, ओढ़े हुए की बात नहीं करता, वो भीतर की बात करता कि हम वास्तव में कौन हैं। भारत जो है बाहर की बात कम करता है, ये पाश्चात्य जगत है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो प्रदर्शन की बात करते हैं और भारत दर्शन की बात करता है। आप सभी बोलिए प्रदर्शन और दर्शन। जहां जहां प्रदर्शन होता है वहां दर्शन नहीं होता है। भारत प्रदर्शन की बात नहीं करता है, दर्शन की बात करता है। एक बात, भारत बाहर की बात नहीं करता, भले ही बाहर से हम अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते, बाहर से हम भाग नहीं सकते, लेकिन बाहर के अंदर रहते हुए भी भीतर की ओर झांकने का भारत प्रयास करता है। भारत तो एक दर्शन है। दर्शन किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान को, एक फिलॉसफी को कहते हैं। अगर आप फिलॉसफी का अर्थ देखेंगे डिक्शनरी में, फिलॉसफी क्या होती है, तो आपको मिलेगा कि भाई लव फॉर इंटेलेक्चुअल, माने बौद्धिकता से प्रेम है। ठीक क्या है, गलत क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, वगैरह वगैरह, जो बाहर की बातें करना उनको फिलॉसफी लगता है, और हमारे यहां उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन जो डीप होता है, जो अंदर होता है, जो भीतर होता है। और भारत का दर्शन क्या है? भारत का दर्शन जो है वो जीने की वस्तु है, व्यवहार की वस्तु है। मुझे याद आ गया, एक बार लंदन में एक परिवार में, एक अपना हिंदू पंजाबी परिवार था, बहुत बड़े अधिकारी थे वो, उनके घर जाने का अवसर मिला, बहुत सुखी संपन्न परिवार लंदन में, बहुत वो केंसिंगटन क्या बोलते हैं ना, केंसिंगटन एरिया में जहां बड़े बड़े लोगों के मकान है, लक्ष्मी मित्तल ने भी जहां लिया है। तो हिंदू पंजाबी परिवार में हम गए, उनकी वृद्ध माता जी बैठी हुई थी और उनकी हवन वगैरह हो गया, तो मैंने कहा माता जी तुआडियां तो मौजा लग गया ने बिल्कुल, है ना, आपकी बड़ी मजे हैं। वो बोली की खाक मजे हैं। उसने, वो माता जी ने जो बात पूछी वो बड़ी काम की बात पूछी, उसने हमको भी सोचने के लिए विवश कर दिया। उसने कहा कि देखो आचार्य जी, हमारा जन्म बड़े अच्छे परिवार में हुआ, पश्चिमी पंजाब से हम आए, बड़े सुखी संपन्न परिवार से थे, फिर विवाह हुआ, वहां भी बहुत हमारे पतिदेव को बड़े अच्छी जॉब थी, हमारा बेटा इतना अच्छी पढ़ाई किया कि यहां लंदन में बहुत बड़ा अधिकारी है, हर प्रकार से उनको सुविधाएं हैं, हम भले ही वृद्ध हो गए हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सारा जीवन किस लिए जिए। ये उस माता का प्रश्न है कि हम सारा जीवन किस लिए दिए, माने जो देखना था सब देख लिया, जो खाना पीना भोगना था, घूमना फिरना था, सब भी कर लिया, लेकिन हमें अब भी लगता है कि हमें जो करना चाहिए था हम नहीं गए। क्या हम इसीलिए आए थे कि दुनिया के बढ़िया बढ़िया चीजों का उपभोग कर सकें? ये वो सियाणी समझदार माता जो वृद्ध हैं वो ये कहती है कि हमें लगता है कि हमें जो करने के लिए आए थे शायद हम वो नहीं कर पाए। कहती भाई जो कोई दरिद्रावस्था में पैदा हो जाते हैं वो धन कमाने में लग जाते हैं, माने अलग अलग लोगों की अपने अपने व्यवसाय है, उसी में लोग समझते हैं कि हमने अब कुछ कर लिया, अब ठीक ठाक हो गया। कहती मेरे लिए तो ये समस्या ही नहीं थी, पिताजी से लेकर के पति के घर से लेकर के आज मेरे पति नहीं है, मेरे पुत्र है, लेकिन हर प्रकार से सुख है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि और उसने एक बात कही कि जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बात कही है, हमें नहीं लगता कि हम मोक्ष के लिए कुछ किया और हम वहां तक कुछ पहुंचे हुए हैं। जो आत्मदर्शन की बात उपनिषद कहता है, हम कहां तक वहां हैं आचार्य जी? हमारे तो उसको ध्यान भी नहीं आए। सारा जीवन जो है हम वो तड़क फड़क में ही रहे, बढ़िया कपड़े डालने में, और मतलब चाहे भारत में है चाहे रहे यहां रहे, ऐसे सुखी संपन्न परिवारों से थे, उनका जीने का एक अलग ढंग होता है, वो सारा हमने प्रॉपर जिया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। अब हमें फील होता है कि हम वो कहां, हम धर्म भी किया, अर्थ भी, हमने धर्म मतलब सो कॉल्ड जो हम जैसे करते हैं वो भी किया, अर्थ भी प्राप्त किया, एंजॉयमेंट भी किया, लेकिन हमें लगता है कि हम वहां तक, जो चौथा पुरुषार्थ है वहां तक हम नहीं पहुंचे, ऐसा होने लगता। ये एक स्याणी माता है, समझदार है, अपने लंबे जीवन पर वो कहते कि अब जब बच्चे अपने काम करते, बहू अपने काम करते, तो मैं अपने जीवन पर विचार करती हूं कि मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ किया फिर भी कुछ बाकी है, ऐसा लगता है, और वो मैं कर नहीं पाई। वो अमृतसर में एक अपने आर्य समाज के बहुत अच्छे भजनोपदेशक हैं, वो कवि भी हैं, विद्वान भी है और भजनोपदेशक भी है। उनकी पंक्ति की माता वो पंक्तियां गुनगुना रही थी, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया तेरा। माता जी कह रही थी, आचार्य जी क्या आंखें इसलिए हैं कि बाहर की चीजें ही देख करके हम उसको आंखों का आनंद समझें? ये दांत हैं, नाक हैं, आंखें हैं, कान हैं, इनसे हम दुनिया का आनंद लेते रहे, जो परमात्मा ने ये मन दिया ये कहीं केंद्रित नहीं कर पाए, ये बुद्धि दी जो बाहर का साइंस तो सीख लिया लेकिन अंदर का साइंस तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, ये जो दिव्य इंद्रियां परमात्मा ने जी दी, यहां बैठ के जो हम दूर दूर लोक लोकांतरों में इस मन के द्वारा हम गति कर सकते हैं, हमें तो लगता है उसका हमने कुछ लाभ ही नहीं उठाया। माता जी का जो प्रिय भजन था मुझे बड़ा याद आ गया अच्छी तरह से, दैवी संपत्ति का अधिकार तुझको दिया, दैवी संपत्ति का अधिकार तुझको दिया, तूने मौका सुनहरा वो क्यों खो दिया, कभी हंसता रहा कभी रोता रहा, कभी हो पल भर भयभीत रहा, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। पंडित नेहरू ने कहा कि ये, पंडित नेहरू ने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और वो कहते कि ये जो भारत मुझे दिखाई देता है, वो कहते इसमें मुझे बड़ी असंगतियां दिखाई देती। मोहम्मद इकबाल ने जो भारत की बात कही, उन्होंने कहा एक तरफ से हिमालय है, एक तरफ से गंगा है, एक तरफ से समुद्र है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो भारत है, मैं भौगोलिक मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, वो रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द है। वो कहते भौगोलिक मूर्ति पूजा, कहते ये जो आप कहते ये भारत जो हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये जो भारत फैला है, कहते मैं, मेरा इसमें विश्वास नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं, अरविंद जी ये कहते हैं कि भारत तो विश्व पुरुष की कुंडलिनी है, जिस दिन ये कुंडलिनी जागृत हो जाएगी विश्व पुरुष का रूपांतरण हो जाएगा, विश्व पुरुष टोटली बदल जाएगा। क्यों जी? नेहरू का भारत और इकबाल का जो भारत है वो भौगोलिक भारत है, और टैगोर का भारत, महर्षि दयानंद का भारत और अरविंद का भारत वो आध्यात्मिक भारत है। ये भारत वो है जो भीतर की बात करता है, अंदर की बात नहीं करता। सभी बोलिए भारत। भारत शब्द दो शब्दों का बना है, भा और रथ। भा का अर्थ है ज्ञान, भा का अर्थ है प्रकाश, उसमें जो रत है, जो उसकी उपासना करता है, जो उसके मार्ग पर जाता है, उसे भारत कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी विश्व जो, बाकी सारी दुनिया जो है, बाहर के ज्ञान की बात करती है, भारत ही एक ऐसा देश है जो अंदर के ज्ञान की बात करता है, भीतर की बात करता है। सच्ची बात ये, भारत की एक अलग बात मुझे आप सबको बताने को मेरा दिल कर रहा था। ये जो बहुत प्राचीन एक श्लोक है, उसमें लिखा है गायंती देवा किल गीत कानी, कि देवता भी गीत गाते हैं कि हे प्रभु मुझे उस भारत भूमि में जन्म दे दो। कौन से भारत में? ये भारत जो ज्ञान विज्ञान का उपासक है, जो भीतर का उपासक है, जो बाहर के प्रवास में विश्वास नहीं रखता, जो भीतर के प्रवास में विश्वास रखता है। देवता भी, कभी ऐसा समय था जो ये गीत करते थे कि मुझे उस भारत में जाना है, उस भारत में मुझे जन्म देना है। आइए, उपनिषद में एक मंत्र आता है। अब हमारे आचार्य श्री उपनिषद की कक्षाएं अनेक वर्षों से ले रहे हैं। परां चिखानी व्यत्रिणत स्वयंभूस तस्मात परांग पश्यति नांतर आत्मन। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है कि परमात्मा ने मनुष्य की इंद्रियां सारी बाहर की ओर खोल दी हैं, इसलिए मनुष्य स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर देखता है। फिर लिखा कश्चित धीरः प्रत्यगाद आत्मानं मैक्षत, कि कोई धीर वीर पुरुष बाहर के दरवाजों को बंद करके बड़ा धैर्यशाली होना पड़ता। क्यों जी? अंदर के लिए, मतलब जो प्रदर्शन के लिए धैर्य की आवश्यकता नहीं, लेकिन दर्शन के लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता है ना, बड़े पेशेंट होने की आवश्यकता है। न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों और वर्षों तक लोग योग का, योग साधना करते हैं, तब कहीं थोड़ा सा दो कदम चार कदम आगे बढ़ते हैं। नहीं लगता क्या आपको? इसे बाहर का मामला आसान है, झटपट दिखाई देता है, दिखाते भी हैं, देखते भी झटपट, लेकिन अंदर की जो है बड़ी कठिनाई वाली बात है, साधना की बात है। तो भीतर जो है, जो कोई धीर पुरुष, स्वामी रामदेव जी महाराज जी का मैंने एक इंटरव्यू सुना, उन्हें बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि उनको उनको प्रश्न पूछा किसी ने कि क्या बात है स्वामी जी, योग तो बहुत डीप चीज है और आप तो अभी आसन और व्यायाम और प्राणायाम जो है इस पर जोर देते हैं। तो स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्वामी जी बोले, जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, जिनको आर्थराइटिस हुआ है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, न जाने कितनी बीमारियां हैं, मैं उनको अंदर कहां से ले जाऊंगा? वो तो बाहर से अंदर एक 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 कदम भी अंदर जाने को तैयार नहीं है। मैं तो उनको पहले फिजिकली स्वस्थ करना चाहता हूं। स्वस्थ का अर्थ मैंने तो बता ही दिया आपको, याद है ना आपको क्या स्वस्थ का अर्थ है? बोलिए स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्व में स्थित, अपने में स्थित, अपने अपने आप में स्थित होना। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तो पहले उनको ये जहां तहां, कोई घुटने में स्थित है, कोई गर्दन में स्थित है, कोई कहीं लंग्स में स्थित है, कोई कहीं ब्लड में स्थित है, कोई कोलेस्ट्रॉल में स्थित है, न जाने कहां कहां लोग स्थित हैं, मैं उनको वहां से निकाल करके अंदर की तरफ एक बार मोड़ना चाहता हूं। मेरा प्राणायाम प्राणायाम के लिए नहीं है, मेरे आसन आसनों के लिए नहीं है, मेरा व्यायाम व्यायाम के लिए नहीं, मैं तो उनको बाहर से हटा के भीतर की ओर प्रवास के लिए शुरुआत कराना चाहता हूं। देवी और सज्जनों, मैं तो आपको आज भारत का, भारत की बात करना चाहता हूं। भारत जो है बाहर की बात कम, अंदर की बात ज्यादा करता है, अगर कोई समझे तो। भला सच्ची बात, अगर कोई समझे तो भारत जो है भीतर की बात करता है। मुझे वो, मैं उस माता को मैं आइडियल मानता हूं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन जिया और दुनियावी ढंग से बहुत आदर्श जीवन जिया, आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी, आदर्श माता, किसी प्रकार से उनकी जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, मुझे वो चीज मैं नहीं कर पाई जो मुझे करना चाहिए था। और उनका ये जो प्रिय गीत है, ये भारत का दर्शन बताता है कि तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे मनाया नहीं मीत गया। कि मैं तो अंदर कहीं पहुंची नहीं, मैं तो अभी बाहर ही हूं, ऊपर ऊपर से ही मैं हूं। कि आचार्य जी, मैं हम क्या इसीलिए जीवन को आते हैं कि मुझे कोई अभाव तो मालूम ही नहीं था, मैंने दुनिया पे सब अच्छे अच्छी अच्छी चीजें खाई, अच्छी अच्छी चीजें पहनी, अच्छी अच्छी दुनिया देखी मैंने, लेकिन मुझे लगता है क्या इसी के लिए तुम आते हो कुल मिला के? भारत जो है मनुष्य को भीतर जाने की प्रेरणा देता है। एक 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 25 वर्ष का बड़ा ही होनहार, बड़ा बुद्धिमान नौजवान एक महाराज के पास जाता है, साधु के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे भी संन्यास दीजिए। वो साधु कहता है भाई आपको संन्यास क्यों लेना है। वो कहता है कि मुझे ऐसी लगती है, दुनिया में मुझे कुछ आनंद नहीं आता है, दुनिया में सब जो है झूठ मूठ है, दुनिया सभी टेम्पररी है। तो साधु कहता है ऐसा कैसे, इतने लोग सभी जी रहे हैं तुम्हें। वो कहता है मुझे जीने को मुझे 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 विरक्ति हो रही। कहते क्यों विरक्ति हो रही, मुझे जीने का कोई ढंग नहीं मिला हुआ है। कहते नहीं लो, तुम जाओ समाज में, जाओ देश में, जाओ पहले लोगों से मिलो, बात करो कि लोग किस लिए जी रहे हैं। एक वृद्ध माता के पास जाता है, वृद्ध माता के पास, तुम क्यों जी रही हो माता। कहते देखो तुम देखते नहीं मेरा एक बच्चा है, बस इस बच्चे के लिए मैं जी रहा हूं। एक व्यापारी के पास वो जाता है, व्यापारी को पूछता है तुम क्यों जी रहे हो भाई। कहते देखो मेरा व्यापार है, उद्योग है, मैं तो मेरा इसीलिए जी रहा हूं। एक नौजवान के पास जिसका विवाह होता है, तुम किस लिए जी। वो कहता है कि बस मेरी ये प्रिय पत्नी है, बस यही मेरा जीवन बस यही है, ये तो मैं बस। वापिस आता है, कहता है कि वो नौजवान कहता है, वापिस आता है साधु के पास, कहता है कि लोग तो अनेक अनेक कारणों के लिए जीते हैं। साधु कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जीने के अनेक कारण नहीं हो सकते। अनेक कारण दिखाई देते लेकिन मूल में कोई और कारण है, पता करो जाओ। कोई युवक पुनः जाता है, खोजता जाता है, वर्षों तक जाता है, फिर देखता क्या है, बूढ़ी वो व्यापारी जो है वो रो रहा है क्योंकि उसके व्यापार में आग लगी हुई है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, सारा धू धू के जल रहा है। व्यापारी कहता है अरे बचाओ कोई, मेरी तिजोरी तो बचाओ कम से कम। किसी ने कहा भाई तुम जाओ ना स्वयं, लोगों को क्यों कह रहे तुम जाओ ना। कहता मैं कैसे जाऊं, जब पैसा तुम्हें प्रिय है तो तुम जाकर खुद निकालो ना। कौन निकालेगा, इतनी भयंकर आग लगी हुई है। मैंने उसे पैसा बहुत प्रिय है लेकिन पैसे से भी कुछ और प्रिय है। ऐसे ही बाकी दो दृष्टांतों में भी उसने देखा कि प्रत्येक मनुष्य भले ही वो कोई प्रिय चीज है, बाहर की दिखाई देती है, लेकिन प्रिय वो नहीं है, उससे भी प्रिय कोई अंदर है। इसलिए उपनिषद कहते हैं भाई पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। क्योंकि वो आत्मा के उपयोग में है, उसके लिए ये सब चीज है, इसलिए वो प्रिय होते। याद रखिए बात, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि सब आत्मा के उपयोग, उसके साथ उसका संबंध है। जीने के अनेक प्रयोजन नहीं हो सकते। भारत कहता है जीने का एक प्रयोग हो सकता है, प्रयोजन हो सकता है, वो है आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। भीतर है वो, बाहर नहीं है, सच्ची बात है। तो भारत एक संदेश देता है, बाहर नहीं भीतर। बोलिए बाहर नहीं भीतर। भारत का जो भौतिक रूप है वो तो बताने को मुझे बहुत अच्छा लगता है, भारत भक्ति के गीत गाने को मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कितने ही यहां गीत गा सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि भारत के स्वातंत्र दिवस पर भारत की जो भारतीयता है, जो भारतपन है, वो कुछ अलग है। वो क्या है उसको थोड़ा सा सोचें। एक संस्कृत में एक श्लोक है, उसकी आधी लाइन मुझे आती है, दूसरी लाइन मुझे पता नहीं है। उसे कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत भाषा और एक भारत की संस्कृति है, जो भा माने प्रकाश की ओर जाती है, जो बाहर नहीं जो भीतर की ओर ले जाती है। तो आज मतलब आप हमसे वयोवृद्ध हैं, जान वृद्ध हैं, न जाने कितने वर्षों से भारत का स्वातंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, हम सबके हृदय में प्रेम है, लेकिन एक अलग एस्पेक्ट, एक डिफरेंट पहलू जो है उसका हम देखेंगे, भारत क्या करता है। भारत बाहर के प्रदर्शन से मुक्त करके दर्शन की ओर मनुष्य को प्रेरित करता है। बोलिए प्रदर्शन नहीं, बोलिए प्रदर्शन नहीं दर्शन। दर्शन की आवश्यकता, भारत बाहर नहीं भीतर की बात करता है। अगर आप गा सकते हैं तो मेरे पास दो तीन लाइनें हैं, कंठ खोलना पड़ेगा। भीतर है सखा तेरा जरा मन टीका के दे, अंतःकरण में
जान की ज्योति जगा के दे।
अब शुरू कीजिए।
भीतर है सखा तेरा जरा मन टीका के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जगा के दे। है इंद्रियों की शक्ति जो बाहर की ओर जो है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो, बाहर की ओर से उन्हें भीतर को मोड़ दो। कर द्वार सकल बंद समाधि लगा के दे, अंतःकरण में जान की ज्योति जगा के दे।
सच्ची बात यह है, अंतःकरण में भारत अर्थात भा में रत होना, अंतःकरण के प्रकाश में रत होना, उसी के पीछे खोजना, उसी को, वो कहते ना उपनिषद में फिर एक टुकड़ा आया है, तमेव एकम जानथ, उस एक को जानो, अन्या वाचो विमुंचथ, बाकी सब बातें छोड़ दो, उस भा को जानो, उस प्रकाश को, भीतर की दृष्टि खोलो और बाहर के पट दे अंदर के पट खोल वाली बात है। भारत का यह संदेश है कि केवल बाहर नहीं भीतर के प्रवास को आरंभ करो। ओ शम Thank you.